ما كان المؤمنون لينفروا كافة. नहीं है मोमिनों के लिए कि वो निकल पड़े सारे के सारे। अच्छा हुआ क्या था, जब ये इतनी बड़ी बात हो गई ना कि सहाबा ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी एक परेशानी हुई उन लोगों को जो पीछे रह गए, और कितना उनके सफर करना पड़ा उनको 50 days, और फिर इस ये कितनी बड़ी बात बन गई क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें उतार दी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो हम किसी जिहाद से पीछे नहीं हटेंगे, हम सारे ही निकलेंगे। तो बता दिया गया कि नहीं, सिर्फ जो तबूक था ना, मैंने बताया कि वहां पे फर्ज ऐन था सबका निकलना। इसके बाद आइंदा के लिए क्या बता दिया गया, फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया क्या होता है, एक सोसाइटी में बाज लोग कर ले उसको तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। जैसे फर्ज किफाया की मिसाल है नमाज जनाजा, अगर कोई एक भी ना किसी मुसलमान का पढ़े तो सारे गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर थोड़े पढ़ लेंगे तो सबकी तरफ से हो गया, एक फर्ज अदा हो गया। यानी मामा कान मिनून लिया फिर उनका आफा, तो सारे के सारे ना निकल पड़े। जाहिर है इंसान के दुनिया के काम भी हैं, कारोबार भी हैं, पीछे भी बच्चे औरतें भी हैं। फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकते, क्यों नहीं ऐसे होता कि हर फिरके से निकले, हर ग्रो में से, मिनहुम तौइफतन एक जमात, यानी हर एक जगह या हर एक नेबरहुड है या हर एक कम्युनिटी है, उसमें से कुछ लोग निकले, एक जमात निकले, और वो क्या करे, लियतफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करे, और नंबर टू क्या करे, वली युंजीरु कौमहुम, और वो इंतजार करे अपनी कौम में, इजा रजाउ इलैहिम, जब वो लौटे उनकी तरफ, जब वहां से इल्म लेके वापस आए तो अपनी कौम को इंतजार करें कि इससे क्या फायदा होगा, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो बचे, ताकि वो भी बच जाए गुनाहों से। तो यहाँ पे बता दिया गया आइंदा के लिए एक लाए हमल दे दिया गया कि अब सब लोगों को जरूरत नहीं है कि सारे ही निकल पड़े, सारे ही जिहाद के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि ये इतनी सख्त आयतें आई थी, तो अब हम क्या करें। नहीं, अब क्या है, अब आइंदा के लिए एक जमात तो जिहाद के लिए जाए, लड़ने के लिए जाए, मगर बाकी लोग में से एक जमात उठे और वो जाके दीन की समझ बूझ हासिल करे। क्यों समझ बूझ हासिल करे, ताकि अपनी कौम को आके इंतजार करे। यानी अब एक जिहाद की एक सूरत तो ये है कि जाके अल्लाह के रास्ते में लड़ना, और एक जिहाद की ये भी सूरत है कि इंसान दीन की तालीम लेके और अपनी कम्युनिटी को संवारे, अपनी कम्युनिटी के में काम करे। और इसीलिए मुफस्सिरीन ने ये भी इस बारे में कहा है कि हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा फर्द जरूर होना चाहिए कि जो जाए और जाके ये दीन की में स्पेशलाइजेशन हासिल करे। तफक्कुह का क्या माना है, देखिए, एक वो है जो कंपलसरी इल्म हासिल करना है, जो फर्ज आइन है, जो सबके लिए जरूरी है, और वो कौन सा है कि जब इंसान अपने हलाल हराम का, अपनी यानी अपनी जो बेसिक इल्म है, अपनी फराइज का, अपनी वाजिबात का, हकूक का, इसका सब का इल्म हासिल करे, अपनी माशरत का इल्म हासिल करे कुरान और हदीस से। लेकिन एक है वो जो डेप्थ में उतरना, बहुत सारी किताबें पढ़ना, एक फकीर बनना, ये बेसिक बेसिक चीजों से नहीं है, ये बेसिक इल्म वो है जो आप अभी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन डेप्थ इल्म की बात की जा रही है कि इल्म में स्पेशलाइजेशन रखना जरूरी है, कि कोई ना कोई जरूर, सारे इल्म लेने के लिए भी, ऐसी स्पेशलाइजेशन के लिए भी सारे नहीं निकल जाएंगे, सब नहीं चले जाएंगे, मगर कुछ एक ग्रुप जरूर होना चाहिए, एक एक ताइफा जरूर होना चाहिए जो ये काम करे। यहाँ पे इल्म की फजीलत का भी हमें पता चलता है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तलब इल्म जो है वो फर्ज है, ये भी एक फरीजा है, हर मुसलमान के ऊपर एक फर्ज है। तो वो बेसिक नॉलेज, और इससे भी आगे बढ़ के फिर ये स्पेशलाइजेशन है। अब वो लोग जब आएंगे तो फिर वो अपने खानदानों को, अपनी कम्युनिटी को संवारेंगे, उनके अंदर इंतजार करेंगे, उनको सही बात बताएंगे, क्योंकि सारे तो पढ़ने के लिए नहीं निकल सकते थे, किसी की कोई मसरूफियत, किसी का कोई तिजारत कारोबार का जॉब, ये सब चीजें थी। लेकिन कुछ लोग, एक उन्होंने समझे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जो जाके स्पेशलाइजेशन लेकर आए। अब वो उनको पता है विरासत के उलूम का पता है, उनको जकात के मसाइल का पता है, उनको और शरीय अहकामात जो मुश्किल मुश्किल वाले हैं उन सारों की उनको एक्सपर्टीज हासिल है, और वो आके आके इंतजार करते हैं। और याद रखें, अब बाज दफा हम ये समझते हैं कि दीन का इल्म हासिल करने का मतलब ये है कि बस हमें नमाज रोजा आ जाए, और फिर इसीलिए सारे लोग कहते हैं तो वो तो हमें पहले ही आता है, पहले ही आता है तो इसलिए हमें तो जरूरत ही नहीं है कि हम दीन के इल्म के लिए निकले। हालांकि दीन का इल्म सिर्फ फराइज या फिक्र को मालूम करना नहीं है, बल्कि कैसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, कैसे अल्लाह वाले बन जाना, और कैसे लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, कैसे अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि बस आप ये कहेंगे बस ये चीजें, ये 1 2 3 ये चीज मैं सीख के आ जाओ, बस मैंने दीन का इल्म ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ी वास्ट चीज है, तफक्कुफ दीन, और फिर दीन का बेसिक इल्म भी बहुत बड़ी बात है कि आप कुराने पाक की तालीम हासिल करें, फिर अपने खानदानों के अंदर उसको बताएं, जितनी भी आपके पास इल्म है। एक तो है ना बहुत स्पेशलाइजेशन लेना, तफक्कुफ फिर दीन है जिसमें मेहनत मुशक्कत के साथ इल्म हासिल करना है, मैस्ट्री करना इसके अंदर हासिल। और एक है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, इस हद तक भी अगर आप इल्म ले लेते हैं, और आज तो अपने शहरों से निकल के कहीं जाने की जरूरत नहीं, मगर डेडिकेशन की जरूरत है कि आप डेडिकेटेड हो इसके लिए, आप अपने आप को फारिग करें इसके लिए, आप अपने और धंधों से अपने आप को थोड़ा सा अलग करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये सोचे कि बस ये भी सारा मुझे आ जाए और बाकी भी मेरी जो पहले की मसरूफियतें उसी तरह चलती है। आज इस मैदान के अंदर ना मेहनत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हाँ, आप पीएचडी किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आपको कंप्यूटर के बड़े माहिर बन रहे हैं, तो उसके अंदर मेहनत सबको समझ आती है, इसके अंदर भी कोई मेहनत होती है? इस पे लोग हैरान होते हैं, इस पे लोग कहते हैं ये कौन सा काम है, ये क्या तुमने काम पकड़ लिया, यानी ये तो बिल्कुल फजूल काम, इसको जानते ये इसकी जरूरत ही नहीं है। हालांकि कम्युनिटी या खानदान चल ही नहीं सकते दीन के ऊपर अगर ऐसे लोग ना हो जिनके पास दीन का इल्म, कैसे चलेंगे, क्या अमल करेंगे जब आपको इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो हम जो ये कर रहे हैं ना, जो हम बैठे हुए हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम क्या कर रहे हैं बताएं। आप कहेंगे हम पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं। इसको दूसरे अल्फाज में बताऊं आपको, कुरान तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम अपने घर का रास्ता मालूम कर रहे हैं। दरअसल हमारा घर जन्नत है, हम अपने घर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इसके बाद जब हमें ये रास्ता तलाश हमने कर लिया, हमें रास्ते का समझ बूझ हो गई, तो फिर हम उस रास्ते पे चलेंगे, फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हम अपने घर का रास्ता मालूम कर रहे हैं। अब जिसको घर का रास्ता ही ना मालूम हो गया, वो भटक जाएगा। लिहाजा बहुत जरूरी है ये दीन का इल्म लेना। और देखें, याद रखिए, इसके अंदर कभी अपनी ये ना करें कि मैं जो सर्टिफिकेट मिल जाए बस, आप सर्टिफिकेट के लिए ना इल्म ले, आप अपने अंदर चेंज के लिए इल्म ले, आप ये रास्ता जानने के लिए इल्म ले कि मैंने अपने घर जाना है। लॉस्ट आदमी कोई अच्छा होता? कोई लॉस्ट नहीं होना चाहता। जिस जिसको घर जाने का रास्ता चाहिए वो ये इल्म हासिल करे। हजरत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के वक्त में ना दो भाई थे, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहता था, इल्म लेता था, दूसरा काम काज करता था, यानी मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन जो वो जो मेहनत करने वाला कमाने वाला भाई था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, शिकायत करने लगा कि देखो जी मेरा भाई है, बस इसको यही है, बस पढ़ते रहना, इल्म लेना, ये ना कमाने में मेरा हाथ बटाता है ना कुछ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया था, शायद किसी के हस्बैंड भी उसको ये कहते हो कि औरों की बीवियां तो जॉब्स कर रही हैं, ये कर रही हैं, और तुम इस पढ़ाई में लगी हुई, तो तुम भी ये छोड़ो और कोई जॉब स्टार्ट करो। तो आपने फरमाया उसकी शिकायत पे कि शायद अल्लाह तुझे इसी की वजह से रिस्क दे रहा है। अल्लाह हू अकबर। तो इसलिए कभी अपने इस पढ़ने को फजूल ना समझे, फालतू ना समझे, ये भी मैं किस में पढ़ गई, लोग इतनी कमाइयां कर रहे हैं, मैं बैठी हूं घर पे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते में ये वक्त दे रहे हैं अपना। तो इससे यहाँ पे इल्म की फजीलत की बात पता चलती है आपको। आप चाहे घर से निकलें या घर में बैठ के आप ये इल्म ले रहे हैं। घर से निकलें फिर तो हर हर कदम, हर हर पत्थर, हजर, जो भी दरख्त, जो भी है, वो जहां से भी आप गुजरेंगे सब लिखा जा रहा है, सब सब आपके नामा अमाल के अंदर नेकियों को बढ़ा रहा है। तो ये तो कंफर्म है ना, देखिए यहाँ पे लिख दिया कंफर्म है। बाकी कामों के अंदर हो सकता है हम कहते हैं पता नहीं ये सही भी है कि नहीं सही है, पता नहीं ये करूं कि नहीं करूं, या कर लेते हैं फिर उसके अंदर कितना है कितना नहीं, उसके अंदर कितने फालतू बातें कर ली, कितनी और चीजें कर ली, अरे ये तो खालिसतन एक नेकी का काम है, ये खालिस अल्लाह के लिए वक्त है। अब हाँ आपने मगर इस वक्त के अंदर चोरी नहीं करनी, यानी चोरी क्या कि अल्लाह के वक्त में से चोर दरवाजे खोले में कभी किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी फोन आ गया, कभी उधर चले गए, कभी किचन देख लिया, कभी फलां कर लिया, तो ये क्या अल्लाह के लिए वक्त हुआ? ये तो आप अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, तो बीच के अंदर मिलावटें की हुई हैं। ठीक है, और अब से फिर इंशाल्लाह टेस्ट देने से भी कोई ना घबराए। टेस्ट के लिए आप जितनी मुशक्कत करेंगे वो नहीं लिखी जा रही, जितने मिनट आप बैठे हैं, जितने सेकंड आप बैठे हैं, जितनी आपको थकन हो रही है, जितनी आपको परेशानी हो रही है, देख लें कि ये तो अल्लाह ताला के पास जाके ही पता चलेगा कि जिसने इस रास्ते में जो कुर्बानी दी उसका सिला क्या अल्लाह ताला देता, इसका अल्लाह ने वादा कर लिया। और ये इल्म के लिए भी कोई कुर्बानी देना सीखे, ये इसी तरह नहीं आ जाता कि आप सोचेंगे कुछ भी ना करें और बस मेरे दिमाग में खुद ही पोरेन हो जाए, और मैं मेहनत भी ना करूं, और मुझे कुछ याद भी ना करना पड़े, और मुझे टेस्ट भी ना लिया जाए, बस चलते फिरते कहीं सुन लिया करूं, और कोई एक बात कान में पड़ी और चार बातें वैसे ही निकल गईं, और फिर उसके बाद कोई आधा सुना आधा नहीं सुना तो बस हो गया, ये बात नहीं है। आपको फिर इल्म आएगा नहीं, ये अंदर रासिख नहीं होगा, याद रखें। अगर इस तरह की आप क्लासेस लेते हैं ना तो फिर ये फायदा नहीं दे सकेगा आपको। ठीक है, अगर आपने वाकई इससे अपना घर का रास्ता पता करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, यकसुई आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। ठीक है, वैसे दूसरे कामों को लिए तो ये बातें बताने की जरूरत ही नहीं होती ना। आप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा चलते फिरते क्लास ले लिया करना, बेटा कोई बात नहीं, तुम गाड़ी चलाते चलाते क्लास ले लिया करना, कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, तुम और घर के काम करते करते तुम क्लास ले लिया करो, बेटियों को हमने कभी ये सिखाया हो, कभी बच्चों को हमने ये सलाह दी हो, वो सब हमें पता है कि बच्चे खामोश, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, दरवाजा बंद रखो, कोई शोर ना करे, हमें पता है कि उसको फोकस चाहिए, हमें पता है कि वो एक बड़ा जहन का काम है, बड़ी हमें उसमें समझ है, लेकिन ना कुरान का सुनना तो ऐसे ही है बस, या तो गाड़ियों में सुने या बर्तन धोते हुए सुने, तो सारा इल्म हमें आ जाना है, काफी हो गया, हमने निकाल लिया अपना अल्लाह के लिए वक्त, निकाल लिया अल्लाह के रास्ते में। कहाँ है आज वो लोग जो इस दीन को कन्वीनियंस के लेवल पे ना ले, कुर्बानी के लेवल पे ले, जैसे सहाबा ने लिया था, कन्वीनियंस के लेवल पे तो नहीं उन्होंने दीन लिया था, कुर्बानी के लेवल पे लिया था। देख लें फिर अल्लाह ताला ने फिर उनकी कैसी जबरदस्त कदरदानी भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिसके कदम भी गर्द आलूद हो जाते ना, कदमों पे मिट्टी पड़ जाती, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकला था, निकलेंगे तो जाहिर है मिट्टी भी पड़ेगी, कोई डस्ट भी होगी, कोई पोल्यूशन भी होगी, तो फरमाया जिसके कदम भी गर्द आलूद हो गए, अल्लाह ताला उसके लिए दोजख को हराम कर देगा। बुखारी की हदीस है। अल्लाह अकबर, वो तो इतना कदरदान है। आप करके तो देखें, कुछ कुछ लगा के तो देखें अल्लाह के रास्ते में। और फिर इंतजार अपनी कौम को, ये इंतजार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ के खुद ही नहीं बैठ गए, अपने लोगों को, जैसे अपना खानदान है, अपनी कम्युनिटी है, अपने करीब के लोग हैं, उनके अंदर उनको वॉर्न करना। ये नहीं बस मैंने पढ़ लिया, मैं अब अपनी किताबों के अंदर ही जुटी रहूं, बस ये हो गया, काफी हो गया, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, उसको सजा दिया। आप अपने जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके खानदान वाले, आपके अपने बच्चे, आपके इर्द गिर्द वाले, उनको इंतजार करना जरूरी है, वॉर्न करना कि एक आखिरत का दिन है, हमें जवाबदेही करनी है, ताकि वो भी बच जाएं, वो भी डर जाएं, वो भी संभल जाएं। हजर का मैंने बताया ना माना, डरना, बचना, खौफजदा करने वाली चीजों से बचना, वो भी बच जाएं। ये होना चाहिए एम, खुद भी बचें और उनको भी कहें। ये ना हो कि किसी को पता ही ना चले इनके पास कोई इल्म है, किसी को पता ही ना चले इन्होंने कुछ सीखा है, और जिस वक्त हम लोगों की मजलिस में बैठे, अपने दोस्त अहबाब में बैठे, तो जो पढ़ा हुआ है दीन और जो नहीं पढ़ा हुआ, सभी बराबर हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। आपके जो इल्म है ना, वो आपकी बातों में, आपके तौर तरीकों में, आपके उठने बैठने में, आपके जो जो सोच में, आपके लिबास में, आपके रहन सहन में, सब में उसकी झलक होनी चाहिए। पता चलना चाहिए थी कि इसने कुछ इल्म लिया है। ये नहीं कि मैं अपने इल्म की धाक बिठाने के लिए बस हदीसें याद कर लूं, बस मैं कोट करती जाऊं और मैं सोचूं कि भाई देखो आयत नंबर फलां का ये, आयत नंबर फलां में ये नहीं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो बताए कि ये इल्म वाली है। छिछोरे ना बन जाया करें, जब वो किसी ऐसे के साथ बैठे वैसे ही बन के बैठ गए, वहां पे नाच रहे हैं, वहां पे आपे से बाहर हो रहे हैं, वहां पे गा रहे हैं, यहाँ कहीं पे झगड़ा करने खड़े हुए हैं, यहाँ पे कहीं आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं, कहीं पे बहसें करने लगे हुए हैं, कहीं पे कोई गुस्सा निकाल रहे हैं, कहीं पे ऐसी जाहिलाना बातें कर रहे हैं कि कुछ सोचे कि ये है जो कुरान वाली है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा अपना भी ऐसा किरदार, ऐसा अखलाक, ऐसी पर्सनैलिटी हो कि वाकई पता चले कि ये वाकई अल्लाह से डरने वाली है, और फिर हम दूसरों को भी बताएं। ठीक है, फिर दूसरों को भी इंतजार करें, तभी कर सकेंगे ना, जब हमने खुद अपने आप को कुछ संभाला होगा। अगर खुद ही हम आउट ऑफ कंट्रोल ही रहते हैं हर वक्त, हमें ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल, ना अपनी जुबान पे कंट्रोल, ना अपने तौर तरीकों पे कंट्रोल, कौन हमारी बात सुनेगा? फिर हम कहेंगे हम कोई बात ही नहीं सुनता। बात कैसे सुने? वो कहता है इसने कौन सा कोई अपने आप को, क्या इसके अंदर चेंज आया जो हम भी, क्या फर्क है हमारे और इसके अंदर? तो बाज दफा हम अपने इदारे को भी बदनाम करते हैं, जब हम बस ऐसा बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का कुछ बात चार सुनी और 10 नहीं सुनी, और उसके बाद बस ऐसा वैसा इल्म लेके, और फिर उसके बाद हम कहीं लोगों में बैठते हैं, तो वो कहते हैं ये है जो दीन का इल्म हासिल करने वाले। हम अपने आप को भी बुरा करते हैं और अपने इदारे को भी बदनाम करते हैं, अपने दीन का नाम भी खराब करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। वाकई फिर हम इस काबिल भी हो जाएं, इतना सीखें कि फिर अपने इर्द गिर्द वालों में भी बात कर सके। और इसे ये भी पता चलता है इंतजार करना है, और इंतजार बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। लोगों को तबशीर पसंद होती है, खुशखबरियां सुनाते रहो, इंतजार ना करो, वॉन ना करो, आखिरत के अंजाम से ना डराओ, कयामत की बात ना करो, दुनिया से जाने की बात ना करो, हिसाब किताब की बातें ना करो। आए आप तो बहुत डराते हैं, आज हमारा ये हाल हो गया। हालांकि असल इसका ये बात है कि इंसान को ऐसी ही बातें बतानी चाहिए लोगों को, ताकि वो भी बच जाए। तो अब औरतों को बड़ा ही होता है, देखो आदमियों को तो लड़ने का कहा गया और उनको जिहाद की इतनी फजीलत, और ऐसी बातें बताई गई, हमारे लिए क्या है, हम तो ना लड़ सकते हैं, ना हम हमारे हमें ये अलाउड है, ना हमें ये हमारे ऊपर कोई फरीजा है, हम क्या करें फिर? तो ये आप दूसरा काम तो कर सकती हैं ना, ये भी एक जिहाद है, ठीक है, जिहाद की। अब यहां पे आपको एक और किस्म भी पता चल गई है, या ये लदीना आमनु कातिलुल लदीना यलूनकुम मिनल कुफार, ए ईमान वालों कातिलु, जंग करो उन लोगों से, यलूनकुम जो करीब है तुम्हारे, मिनल कुफार काफरों में से, यानी जब जंग फर्ज हो जाए, ऐसे नहीं है कि जो करीब है, अब उठ कोई उठे अपने हमसाए में जाके वहां पे मरने मारना शुरू कर दे, कत्लो गारत शुरू कर दे। लेकिन जब इन आयात को ना मिसकोट किया जाता है, कई यूथ को इन आयात को लेके और फिर उनको समझाया जाता है, देखा कुरान तो ये कह रहा है, चलो तुम निकलो और कहीं जाके फट जाओ, ऐसा नहीं है। जब जंग फर्ज हो गई हो तो तब, मैंने आपको बताया था कि फर्ज फर्ज जब जिहाद हो जाता है तो उसकी तीन सूरतें मैंने आपको बताई थी कि सूरह बकरा में उसकी आयत है, सूरह निसा में, सूरह हज में, पहले बता चुके। अब जब ऐसे फर्ज हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर करीब से शुरू करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शुरू की थी जिहाद, भी कैसे शुरू की थी, यानी ये बताया गया कि जंग भी जो है ना ये भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड चीज है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी काम शुरू कर दे। इस्लाम में ना हर चीज को बड़ा डिसिप्लिन को बड़ी अहमियत दी गई है, कि डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज्ड होके। फिर भी आप देख ले, हम मुसलमान ही सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड कौम है, हालांकि हमारे दीन भी कहते कि किस तरह सिस्टमेटिकली लेके चलने की बात करता है, कि पहले जो लड़ाई होगी वो अपने करीब के काफरों के, पहले जो रुकावटें आपके करीब वालों ने खड़ी की हुई है उनके साथ आप निपटेंगे, उसके बाद आगे की कोई बात हो सकती है। ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखे, पहले आपने कुरैश के अंदर तबलीग की, बल्कि पहले तो अपने खानदान में, बनू हाशिम में, फिर कुरैश में, फिर पूरे मक्का में, फिर आगे आगे चलते चलते फिर आगे कबाइल तक गए। और देखिए रोम की तो, उनसे तो जंग करने के लिए बिल्कुल एंड में गए हैं, ऐसे नहीं कि पहले हम उनके साथ जंग करने चल पड़ते। तो सबसे पहले तवज्जो किसकी तरफ होनी चाहिए, जो करीबी लोग हैं, क्योंकि आप ये भी देखें कि जो करीब के लोग होते हैं ना वो ही सबसे ज्यादा इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो उनकी इसलाह की सबसे पहले फिक्र होनी चाहिए, तो पहले उनसे साथ निपटो। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप अपने हमसायों के साथ हुस्ने सलूक ना करें, उनसे लड़ना खड़े के लिए खड़े हो जाएं, या किसी और से कि भाई आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे काम करते हैं तो आप उनके साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, हमारे कुरान में तो ये कि जो करीब वाले उनके साथ पे, नहीं, हर भी काफिर की बात हो रही है। बाकी आपके हमसाए में है कहीं है, उनके साथ अच्छा बिहेव करना जरूरी है, वो हर भी नहीं है। आपके घर कोई मेहमान के तौर पे आ जाए, आपके साथ कोई काम करता है, आपके करीब कोई रहता है, उसके साथ उसने सलूक करें। तो वल यजीदू फीकुम गिलजा, और चाहिए कि वो पाए आपके अंदर सख्ती। सख्ती का मतलब क्या, उनके साथ लड़ने शुरू हो जाओ, उनके साथ तू तू मैं करें, नहीं, सख्ती का मतलब यही जो मैं आपको बता रही हूं, कि इतने मजबूत हो जाओ अपने दीन में कि दुश्मन पे रोब बता रही हो, वो तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करे तुम्हारे दीन के हवाले से, कि तुम टफ हो, तुम ऐसे नहीं हो कि वो, अच्छा वो कहेगा कि चलो आओ हम यहाँ पे चलें और किसी जगह पे जाके वहां पे कुछ ऐसा गलत काम करें, कहीं किसी मंदिर पे चलें, किसी चर्च पे चलें, तो आप कहें हाँ ठीक है चलो अब इसने कह दिया तो चलते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया ना कि इंसान के जो करीब वाले होते हैं ना उनका उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, और वो प्रेशराइज भी करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये है सख्ती। कि जहां पे अल्लाह ताला से वफादारी का मामला आ जाता है ना वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अल्लाह ताला चाहता है कि कोई भी रिश्ता है, चाहे चाहे कोई तो ही ताल्लुक है, मगर सबसे पहले वफा अल्लाह से होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ नहीं मैं तो इतनी अच्छी गुड मैनर्स वाली हूं कि आप तो जो भी कहेंगे वही मैं कर लूंगी, मैं इतनी हुस्ने अखलाक वाली, ये अखलाक नहीं कि आप दीन पे कॉम्प्रोमाइज करें। आप देखिए ना, वैसे भी करीबी लोगों के अगर आप मिसाल लें
तो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे हमें इन्फ्लुएंस करके कह देते हैं कि आपने ये नहीं करना या ये आप करें, तो हम फौरन मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इसमें वो हमारे अंदर सख्ती पाए, उनको भी पता हो कि हमारे माँ बाप, ये दीन की बात आती है ना, तो इसमें ये नहीं मानेंगी मेरी बात। ये नहीं हो कि वो ये आपसे उम्मीद रखें, इसका मतलब यू आर नॉट टफ देन। अगर वो आपसे उम्मीद रखते हैं ना कि मैं तो माँ को जिस तरह मर्जी कह लूंगी, जो चार आंसू बहा के दिखा दूंगी और माँ ने मान जाना है, और फिर जो जैसे मैं कहूंगी वैसे चलेंगे और अल्लाह की हदों को तोड़ेंगे और अल्लाह की नाफरमानियां करेंगे और गुनाह में पड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों को आपके अंदर दीन के मामले में पता होना चाहिए कि इसके अंदर दीन के मामले में सख्ती है। ये इस मामले में हमारी बात नहीं, हमारी माँ मानेंगी, ये पहले से ही पता होना चाहिए कि वो आपके सामने वो बात ना रखे। तो इसी तरह काफरों के लिए भी, कि वो आपके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं, आपके कहीं करीब हैं, अब वो आपको ये समझते हैं कि ये तो बड़ी नाइस है ना, तो ये इसमें भी इतनी नाइस होगी कि हम कुछ भी कहेंगे तो ये करने को खड़ी हो जाएगी। नहीं, क्या ये है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया वालमुन अल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह ताला जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है, यानी इस मामले में भी तकवा होना चाहिए। चाहे दुश्मन का मामला है ना, यहाँ पे तो एक जंग की बात हो रही है, उसमें भी तकवा। उसमें तकवा कैसे? इसलिए कि उसमें हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ना आए कि हम किसी से नफरत करते हैं इसलिए हम उसे लड़ना चाहते हैं, नहीं इसलिए नहीं, उसमें भी अल्लाह की जात की खातिर लड़ना, या हम किसी को गुंजाइश दे रहे हैं तो वो इसलिए कि हमें वो पसंद है तो हम उसको जाने देते हैं, नहीं उसमें भी तकवा। आप देख लेना हजरत अब्दुर्रहमान बिन, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं कि अपने वालिद से कि आप कितनी दफा उहद में ना, कितनी दफा आप मेरी तलवार की जद में आए लेकिन मैंने आपको जाने दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं कि लेकिन अगर तुम मेरे तलवार की जद में आते तो मैं ना तुम्हें जाने देता। इसलिए कि वो लड़ते अपनी पर्सनल एफिलिएशंस, पर्सनल ताल्लुकात, अपनी अपनी पसंद या नापसंद, अपनी मोहब्बत या नफरत के लिए नहीं थे, सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए करते थे ना। सुभान अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.